الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حضرات. ویسے کیمرہ حسن بھائی پہ جانا تھا لیکن کیمرہ مجھ پہ آ گیا, پتہ نہیں آج کیا بات ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت ہوں گے. جی حسن بھائی,
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نواس رسول کے ایک بیان سے. اور وہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خیر کے جس کے بعد کسی شر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, مصیبت کے وقت صبر اور نعمت کے وقت شکر ہے. پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. پھر سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. آج بھی ہم آپ کے لیے بہت زبردست چیزیں تیار کر کے لائے ہیں. تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے جو کل کا موضوع ہم لوگوں نے, یعنی آج کے حوالے سے جو آپ کو بتایا تھا, اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. رباب بہن بتائیں گی اس کے بارے میں.
السلام علیکم حسین بھائی, میں پھر سے اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. تھوڑا کیمرے کا گڑبڑ تھا, مسئلہ ہو گیا تھا, کوئی بات نہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک خوبصورت سی, ایک حشاش پشاش سی, ایک پیاری سی صبح کا آغاز کر چکیں گے آپ کے ہمارے اپنے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ. جی جیسا حسن بھائی نے بتایا کہ موضوع میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. جی ہاں, تھوڑے مسائل کی وجہ سے ڈاکٹر آغلہ حکیم آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی, ان کی جگہ ڈاکٹر حاجی بہادر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ویسے ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ, بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی آیا ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس کے کیا نقصانات ہیں, ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے. جی
یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. ابھی میں اسٹوڈیو سے باہر ان سے پوچھ رہا تھا اس کے حوالے سے, تو اسی کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ یعنی ہم لوگ کے معاشرے میں جتنی بری عادات ہوتی ہیں وہ بچوں کے سامنے, ہم لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے دیکھ لے اس میں کیا ہوتا ہے آگے, لیکن جا کے جو متاثر ہوگا وہ کس حد تک خطرناک ہے ہم لوگ کے لیے, خود اس بچے کے لیے وہ بہت ہی.
اور یہ بات ہے اور بچے بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے سامنے یہ کام کرنا, یہ ہمارے مستقبل ہیں, بچے آئندہ ہیں ہمارے, تو بالکل غلط کام ہے یہ کرنا میرے خیال سے.
ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین, آج کے موضوع کے حوالے سے, ایک تو یعنی ہفتے کا ہم لوگوں کا موضوع ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا, اس کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ اگر پچھتائیں تو ہم لوگوں کے لیے کیا یہ مفید ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ ایک اور پہلو پہ نظر ڈالی جائے گی آج. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو آج کے موضوع کے حوالے سے بتانا چاہوں گا, خود اس کے نقصانات ہیں یہ جو سگریٹ کے حوالے سے ہیں, یا بچوں کے سامنے ہم لوگوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک دو اور ہم والدین کی جانب سے بری عادتیں پڑ گئی ہیں بچوں کی, اور وہ ہے ڈیجیٹل سامان کا یوز, جو کل ڈاکٹر سلیل فاطمہ بھی اس کے بارے میں بتا رہی تھیں. تھوڑی اس کے بارے میں ایک جو تازہ ترین تحقیق ہوئی ہے, میں نے کہا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کے موضوع بھی پرانا ہو جائے, ویسے مربوط بھی آج کے موضوع
بالکل بچوں کا دن ہے,
بری عادتوں کے بارے میں, تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ناظرین, کیونکہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے آج کا پروگرام. آپ لوگ ضرور دیکھیے گا ہم سے رابطے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ویسے کر تو آپ خیر بہت کچھ سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے رابطے کا طریقہ جو ہے وہ جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیے اس بریک کے دوران. جی ناظرین, اس وقت بج رہے ہیں 6:37, تہران اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کئی چیزیں بہت زبردست ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں. اگر آپ کو, ویسے کوئی خاص آدمی میرے مد نظر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ڈرنک چھوڑنی ہے تو ایک اور راستہ بھی اس کا ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا آپ کو, تو ایک بہت ہی مفید طریقہ ہے, یقیناً متبادل نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے یہ بھی, لیکن اس سے بہتر ہے. اور ایک راستہ ہے کولڈ ڈرنکس, یا جسے کہتے ہیں فیزی ڈرنکس, یا اگر آپ سمجھیں کہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں اسے چھوڑنے کا طریقہ, یہ ایک بہت ہی اہم ہے, آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو یہ آج کا پروگرام اس حصے بھی میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک دو تحقیقات بھی آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ ہم پیش کریں گے, بہت ہی اہم اور بہت زیادہ مفید ہیں, تازہ ترین تحقیقات ہیں. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ روبا بہن کے, ہم لوگوں کی جی. یعنی جب بھی ہم پروگرام تیار کریں تقریباً ہر روز آنا ہوتا ہے, ہر روز کا ہر روز ہی ہم وقت رکھتے ہیں, یعنی اتنا وقت ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس, رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ ہوتا نہیں ہے, ہم لوگ نکالتے ہیں وقت کے تازہ ترین
تحقیقات سامنے لے کے آئے, تاکہ ہماری ناظرین کو بھی ان سے کوئی فائدہ ہو. اور اگر ان کا لائک انٹرنیٹ وغیرہ پہ نہیں پہنچ سکتے یا ان کو ایسی خبریں نہیں مل سکتی, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تازی تازی خبریں جو بالکل آج کی تاریخ سے ہوں آپ کے لیے لے کے آؤں. ویسے حسن بھائی کو لگتا ہے جب تک میری یہ کولڈ ڈرنک والی عادت نہیں چھڑائیں گے تو میرا پیچھا.
میں نے کہا نا, میں کسی خاص شخص کی بات نہیں کر رہا,
یہ کہتے ہیں نا بند الفاظ में जो आप मुझे ही टोक रहे थे, तो मुझे पता चल गया इस बात
का। उसमें नहीं, ये ऐसी आदत है कि बहुत सारे लोगों की होती है, अपने जान पहचान अपने दोस्तों में ही अच्छे खासे हमारे दोस्त हैं जो इस कह सकते हैं मुश्किल में मुब्तला है, तो बहरहाल उसका हल करना,
हमारे यहाँ तो एक खानदानी मसला पेश आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ
काफी पुरानी हुआ है, जो कंपनी थी असल में बनने वाली बनाने वाली उसके साथ साथ चल रहा है।
हमारे घर में मुझे याद है पानी की जगह हमेशा, अभी जो मेरे घर वाले प्रोग्राम देख रहे हैं, ये गैबत नहीं है, मैं आप लोग के सामने बोल रही हूँ, वो कोक की बोतलें हमेशा सजी हुई होती थी, यानी जब लोग आते थे पानी पीने तो हम परेशान रहते थे पानी कहाँ से लेके आए ठंडा पिलाने के लिए।
अच्छा, तो हमेशा ही मसला जाता था
जी हमेशा।
तो बहरहाल आप लोग इबरत हासिल करिए नाजरीन, चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, एक प्रोग्राम आप लोग देखिए, उसके बाद डॉक्टर हाजी बहादुर से मुलाकात करेंगे।
देखिए, मस्जिद बहुत बड़ी है और अपना हमें जो है अपना सफ़र आगे बढ़ाना होगा। हम चाहेंगे कि आप जो है इस पूरी मस्जिद को अच्छी तरीके से जो है निहार लें। ये दिल्ली का एक जो है से कहेंगे हीरा, ये मोती जेम है जो आजकल जो है इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो आइए अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं और मस्जिद के दूसरे हिस्सों का जो है मुआयना करें। जैसे कि हम लोगों ने नीचे जो है पूरा मस्जिद को जो एक्सप्लोर किया, उसको देखा, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक रास्ता था और फॉर्चुनेटली हम जो है बहुत खुशनसीब हैं, इस मस्जिद में ऐसा कोई गार्ड नहीं है, तो उसका रास्ता जो है ऊपर जाने का खुला हुआ है। और ख़ासकर मेरे अंदर तो एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि आखिर ऊपर होगा क्या। तो चलिए ऊपर चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि ऊपर क्या मिलता है। सर्दियों की आमद हो गई है और सुबह की जो धूप है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे ठंड लग रही थी, मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा के आया था। अभी यहाँ पे मन कर रहा है कि धूप है और लेट जाएं यहाँ पे, थोड़ी देर सो जाएं, आराम फरमा लें, पर क्या कर सकते हैं, हम काम पर हैं, हम आराम नहीं फरमा सकते। पीछे की तरफ आप ये देखिए, ये जो गुंबद है जो हम लोग नीचे से जो है निहार रहे थे उसको ऊपर से निहार लेते हैं, कितने सारे हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी सुल्तान का ताज, किसी सुल्तान के ताज रखे हो एक साथ यहाँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने उसको नीचे से निहारा, उसका नीचे से मुआयना किया, तो खासकर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं किसी भी इसी तरीके से जो तारीखी इमारत है अगर मैं वहाँ जाऊँ तो उसके छत पे आने का जो है मुझे एक मौका मिल जाए, जो यहाँ मुझे आके मिल गया। यहाँ आके मैंने क्या पाया कि लाइन से है जो नीचे जो गुंबद टाइप में जो बना हुआ था, लाइन से इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे किसी कई सुल्तानों के ताज जो हैं उनको उतार के जो है लाइन से लगा दिया गया। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं और उसको जो है मुआयना करते हैं, उसको देखते हैं, उससे रूबरू होते हैं, यहाँ आसपास का जो एरिया है उसको देखते हैं। यहाँ मुझे तीन ग्लासेस नज़र आए हैं, ये एक दो तीन नहीं, तीन नहीं, ये चार ग्लासेस हैं। ऐसा लगता है कि लोग अब आते हैं ऊपर और उसके बाद फिर पार्टियाँ किया करते हैं और मस्ती किया करते हैं, नमाजें तो जो है अब नहीं होती, अब मस्ती ही रह गई है खाली। सुभान अल्लाह, मतलब दिल को सुकून पहुंचाने वाला नज़ारा, अगर कहीं देखना है तो यहाँ देखिए। एक तरफ है इस पे हम खड़े हुए हैं 14वीं सदी की जो है ये इमारत, और उसके सामने जो है खूबसूरत वीरान जंगल, ताज़ी ताज़ी हवा, बहुत मतलब बहुत सुकून भरी जगह है। मतलब अगर किसी को पढ़ना है, कोई राइटर है या किसी को फोटोग्राफी करनी है, तो वो यहाँ आ सकता है। मैं सामने दिखाना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ वहाँ पे फोटोग्राफी जो है अभी भी हो रही है, लोग आते हैं यहाँ पे। आर्किटेक्ट के जो खासकर जो आर्किटेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इमारत जो है खास जो है जगह रखती है, वो यहाँ आते हैं, उसको सीखते हैं कि किस तरीके से जो है उस तरह की उस तरह उस जो उस दौरान के जो लोग थे वो किस तरीके से जो है काम किया करते थे। इसमें देखते हैं, देखिए कितने सारे पत्थर, ये हिस्सा जो है टूटा हुआ है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल किया गया होगा। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे बड़े, कोई ऐसा तराशा नहीं हुआ है, उनको जो है एक साथ लगाया गया है। उसके ऊपर एक मोटा सा प्लास्टर, ये देखिए इतना मोटा प्लास्टर है जिसको उसके ऊपर लगाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दीवार है वो इतनी मोटी रही होगी, इतनी नहीं तो इतनी तो रही ही होगी, पुरानी बात है, शाही मस्जिद है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर दिल्ली की एक और ख़ास इमारत का जायका मैंने आप तक पहुंचाया, आपको उससे रूबरू कराया, उम्मीद करता हूं आप तक इसका जो है जायका पहुंचा होगा और आपको जो है ये खासी पसंद आई होगी। मैं एक मुसाफिर हूं, फिर आपको मिलूंगा किसी एक और नए मकाम पे, आपको उसका जायका पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।
सिगरेट नोशी के बारे में जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उनके हज़ार बहाने ज़रूर होते हैं कि सिगरेट में कोई नुकसान नहीं है, फलां को देखा हमने, वो इतनी उम्र उसकी लंबी थी और कोई उसको असर नहीं हुआ और आखिरी दिन तक वो पीता रहा। लेकिन चलें, हो सकता है उसकी उम्र कम हो गई हो, आपने सिर्फ वो हिस्सा देखा हो। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने जो भी शख्स रहे हों और उनका इंतकाल हो गया, 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, तो 120 साल हो सकता है कि अल्लाह मियां ने उनको उम्र दी और उन्होंने 40 साल कम कर दी हो, और यकीनन ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों को जो कम से कम जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनसे बस ये हम तकाजा करेंगे कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चों के सामने ना पिए, वरना आगे जाकर पछतावा बहुत, यानी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वक्त। और एक वाकया मुझे याद आ गया, वो मैं ज़रूर आपको आज बताऊंगा क्योंकि बीच बीच में वाकयात याद आते रहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता। लेकिन आज जो वाकया मुझे याद आया वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर हाजी बहादुर से।
जी बहुत शुक्रिया हसन, मैं भी एक बात बताना चाहूँ नाज़रीन को। नाज़रीन जो सिगरेट पी रहे हैं वो तो खैर अपनी सेहत को तो हर लिहाज से एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो उनके अतराफ़ वाले लोग हैं वो उस धुएं से सिगरेट के, उनको भी कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। ख्याल रखिए कि अपनी सेहत को तो आप ख़राब कर रहे हैं लेकिन दूसरों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए। चलते हैं डॉक्टर हाजी बहादुर के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप डॉक्टर साहब?
शुक्रिया,
बहुत 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 शुक्रिया तशरीफ़ लाए डॉक्टर साहब। आज का एक बहुत अहम मौजू सिगरेट नोशी के असर बच्चों के सामने, पहला सवाल तो यही होगा कि इसके असरात क्या हैं हमारे बच्चों पे या हमारे आने वाले मुस्तकबिल पे जो हमारे बच्चे ही हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं सहर टीवी की पूरी टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ, आज इस मौजू पे मुझे दावत दी है कुछ गुफ्तगू, और उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएँगे
इंशाल्लाह।
ठीक है, तो सिगरेट नोशी एक बहुत बड़ी लानत है पूरी दुनिया में, जो सेहत हामा के मसाइल में इसमें सिगरेट नोशी सबसे सरपरस्त है। वजह इसलिए है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इस लत में मुबतला हैं, और 25% इनमें से खवातीन भी शामिल हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जो सिगरेट नोशी है तकरीबन बहुत जानलेवा बीमारों को दावत देती है। इसमें अमराज कल्ब है, फेफड़ों की कैंसर है, सांस लेने जो सांस का निज़ाम है इसकी बहुत सी बीमारियों की बायस बन सकती है। और जो नई तहकीक सामने आई है उसमें ज़ायबिटीज़ जो है सिगरेट नोशी की वजह से ज़ायबिटीज़ लाहक होने का भी,
ज़ायबिटीज़ की बीमारी,
ज़ायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी लाहक हो सकती है।
अच्छा,
जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं ना, नोशी करते हैं,
तो
उसमें ज़ायबिटीज़ लाहक होने के चांसेस बहुत
बढ़ जाते हैं।
ठीक, तो
ये तो बात हो गई कि हमारे बच्चे जो हैं हम उनके सामने वालिद साहब या अब तो मामू का मैं नहीं कहूँगी लेकिन वालिद साहब या मामू या चाचा जो भी है बच्चों के सामने सिगरेट नोशी कर रहे हैं, हमारे बच्चे उनसे क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं सिगरेट नोशी के मामले में उनसे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन कि हमारा मौजू भी आज इस तरह है कि हम बच्चों के सामने मोस्टली करते हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, कोई गाड़ी में जा रही है, वालिद साहब जो है सिगरेट जला लेता है, बच्चे साथ बैठे होते हैं या घर में बच्चे सोए अक्सर होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कि वालिद साहब या वालिदैन में मदर या फादर दोनों में से कोई भी अपना सिगरेट जला लेता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो अकेले खुद सिगरेट नहीं पीता, वो उसको भी पिलाता है,
बच्चों को
भी पिलाता है। इसमें यह है कि उसको एक्टिव स्मोकिंग तो वो कर रहे हैं खुद इसका, और पैसिव स्मोकिंग वो उसके बच्चे हैं। 15% जो धुआं है वो खुद अपने नाले जो फेफड़ों के अंदर दाखिल करता है और 85% जो है वो बाहर छोड़ लेता है।
ठीक, तो इसमें जो अतराफ के लोग ले रहे हैं,
जो अतराफ के लोग हैं उसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं।
बिल्कुल,
सबसे जो वो मुतासर कर सकते हैं वो अपने बच्चों को, जब वो घर में पीता है, कमरे में पीता है या अपनी गाड़ी में पीता है, बच्चे सामने हैं, बच्चे बैठे हैं, तो अपने बच्चों को मुतासर करता है। तहकीक के मुताबिक जो सिगरेट नोशी है इसके धुएं में तकरीबन 4000 कीमियाई मुरकबात शामिल है।
तो ये तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी,
बहुत मुज़र से चीज़ें। सबसे इसमें जो ख़तरनाक है वो निकोटीन है।
अच्छा,
निकोटीन उसमें कीमियाई मुरकब है।
अच्छा, अभी आपने बात की एक्टिव के बारे में, एक्टिव स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स, क्या चीज़ है ये एक्टिव स्मोकर्स और पैसिव स्मोकर्स?
जी, एक्टिव स्मोकिंग उसको हम कहते हैं जो बंदा खुद सिगरेट पीता है।
ठीक,
वो 15% जो धुआं है वो अपने फेफड़ों के अंदर खुद दाखिल करता है। पैसिव स्मोकर वो होते हैं जो इर्द गिर्द उसके साथ बैठे हुए होते हैं, वो खुद तो नहीं पीते
हैं, लेकिन बेचारों को पिलाया जा रहा है,
उनको जबरदस्ती बिलावास्ता ना पिलाया जाता है, बिलावास्ता उनको वो भी शामिल है इसमें, वो 85% ज्यादा लेते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। पैसिव स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक है बनस्बत एक्टिव स्मोकिंग के, क्योंकि वो 85% ज्यादा धुआं जो है वो इनहेल कर रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई, क्या ऐसा एक बात है कि एक वालिद या जो भी घर का एक शख्स है जो बच्चे के सामने स्मोक कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, आया वो बच्चे के मुस्तकबिल पे, जो आइंदा वो बच्चा बड़ा होता है, कोई इनका लेना देना है आपस में? शायद बच्चा भी आगे जाके अगर सिगरेट नोशी करना शुरू हो जाए तो वो बचपन से ही जो देखा है इसने, इसके जहन में था, इसलिए हो रहा है या नहीं कोई और वजह इसकी?
ये जी आप आम सी बात है, लोगों ने भी देखे होंगे, लोगों को भी पता है कि जो वालिदैन सिगरेट नोशी करते हैं उनके बच्चे उनको देखते हैं।
ठीक,
वो उस वक्त भी अक्सर वो उठाते हैं, जलाते हैं।
अच्छा, अक्सर देखा गया बच्चे पेंसिल मुंह में डाल के बैठ के पी रहे होते हैं,
पी रहे होते हैं, उन्होंने कहाँ से देख लिया ये, उसने स्कूल में नहीं देखा ये चीज, उन्होंने घर में से ये चीज सीखी है। आगे थोड़े से ये बढ़ जाते हैं तो ये उनके जहन में होता है। अच्छा, सिगरेट पीना वो आसानी से शुरू करते हैं। अच्छा, सिगरेट लोग इस तरह पीते हैं, एक बार दबाव उनकी पैशन बन जाती है, पैशन की तरफ पीते हैं, पैशन की वजह से पीते हैं।
दोस्त क्यों है सिगरेट, मतलब क्या वजह है इसकी, सिर्फ आने की क्यों पीते हैं आपके ख्याल में?
मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस तरह ये है कि वजूहत बहुत से हैं, साइकोलॉजिकल बहुत से बहाने लोग बना रहे होते हैं।
हम बोलते हैं हम जिंदगी के स्ट्रेस में हम सिगरेट पी
बहुत हैं स्ट्रेस है, और इसको से पहले सबसे पहले उनकी वो पैशन के तौर पर पीते हैं।
अच्छा,
एक दिन में सिगरेट पी लिया, आज मौसम अच्छा है थोड़ा सा सिगरेट पी लिया,
दोस्तों के साथ
दोस्त आ गए उससे सिगरेट पिलाए, ठीक है। बाद में इसमें जो मैंने बताया निकोटीन होती है इसमें, वो एडिक्ट करता है बंदे को।
अच्छा अच्छा,
तो उसके बगैर फिर उसका चारा नहीं रहता, मजबूरी बन जाती है फिर नेक्स्ट स्टेप में, वो फिर नहीं छोड़ सकता आसानी से।
अभी इस आपने बोला कि मजबूरी बन जाती है, एडिक्शन है, तो वो जो पैसिव स्मोकर्स हैं या ऐसा वो बच्चा है जो उस तरफ बैठा हुआ है कमरे में, आया ये उसके लिए भी होगा कि वो उसको एडिक्ट कर रहा है वो धुआं उसको या नहीं?
नहीं, वो भी फिर इस तरह मुतासिर नहीं होते, एडिक्शन उसमें नहीं आती,
पैसिव में नहीं आती,
पैसिव में एडिक्शन नहीं होती, एक्टिव में एडिक्शन बहुत होती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब तो हमने घर में बात कर ली कि चले घर वालों के अफराद, माशरा भी हमारा इस तरह है कुछ, जब बाहर जा रहे हैं तो लोग पान खा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, माशरे का कितना अंदाजा यानी किरदार कितना अहम एक बच्चे के जहन के ऊपर के सिगरेट नोशी की तरफ वो खींचा जाए या नहीं?
माशरे का बहुत अहम रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। अब तो तकरीबन लास्ट दहाई से इस पर बहुत दूरी दुनिया में कोशिश हो रही है कि इसको डिस्करेज किया जाए, सिगरेट नोशी नशे जितनी भी चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे मज़हब हैं तो बिल्कुल नशा ममनू है, इजाज़त ही नहीं है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है कि इसको डिस्करेज कर लें, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, एक आम सिटीज़न की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक कम अज़ कम तो ख्याल रखें अपने।
हुकूमती सतह पर आपने भी बात की, हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से इकदामात किए जाएँ यानी कि एक बच्चे के लिए स्कूल के अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम्स आपके ख्याल किए जाएँ?
अवेयरनेस होने चाहिए, गवर्नमेंट की साइड की तरफ से भी अवेयरनेस होने चाहिए और कानून की सख्ती भी करनी चाहिए, خاص کر جو لوگ پروخ کرتے ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کم از کم بچوں کو وہ پروخ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور جو لیبلنگ ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے ٹی وی پہ یا جو اخبارات میں, جو سگریٹ کم از کم ایڈورٹائز نہ ہو, نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اس کے الٹا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے کہ یہ مضر صحت ہے, یہ کینسر کا باعث ہے, اس طرح کی. تو اور سزائیں ہونی چاہیے, تھوڑی سی سزائیں ہونی چاہیے, سختیاں ہونی چاہیے تاکہ پبلک پلیسز میں, اسکول میں, کالج میں, بس میں, اس میں کوئی سگریٹ نوشی.
یہاں تک تو بہت شکریہ, ان شاء اللہ گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. چلتے ہیں حسن بھائی کے پاس. جی حسن,
بہت شکریہ, بہت مفید گفتگو تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے تو حکومت ہمارے بچوں کا کیا خیال رکھے گی؟
پہلے انسان کو ذاتی طور پہ خود اپنا کو تیار کرنا چاہیے,
اپنے آس پاس کے ماحول کو اگر ٹھیک کریں تو آہستہ آہستہ یقیناً کر کے بہتر ہو جائے گی. لیکن ذمہ داری حکومت کی اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم ہے. ناظرین, چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. باہر موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے, ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں اور رات بھر بارش ہوئی ہے, کل دن بھر بارش ہوئی ہے. تہران کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ تقریباً کہہ سکتے ہیں پورے ایران, مرکزی اور شمالی ایران میں. محکمہ موسمیات کی بھی ہم نے ذمہ داری تھوڑی بہت سنبھال لی ہے اور اس سلسلے میں یقیناً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو لوگ ایران کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ, ویسے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, ہلکی سردی ہو گئی ہے بعض جگہوں پر, مشہد مقدس میں, قم میں, وہاں پہ کھلے میدانی علاقوں میں زیادہ سردی بہرحال محسوس بھی ہوتی ہے. تو اگر آ رہے ہیں تو گرم کپڑے لے کر آئیں. اور ایک چیز میں بتاتا چلوں اسی اچھے موسم کے حوالے سے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا چکر ہے, میں دیکھتا ہوں اور یقیناً آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب بھی موسم بہت اچھا ہوتا ہے, کسی خوبصورت پارک میں آپ ٹہل رہے ہیں تو اسی وقت سگریٹ پینے والے سگریٹ بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت جب پوچھا بھی تو اس وقت ان کو زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا کیا قصہ ہے؟
یہ تو ایک میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک نفسیاتی وہ ہے, لوگ پیشن کرتے ہیں, موسم اچھا ہے کہتے ہیں, بارش ہوئی ہے, ٹھنڈا ہے, مزہ دے رہا ہے تو انجوائے کرتے ہیں.
اچھا, یہ نفسیاتی صرف مسئلہ ہے؟
نفسیاتی ہے.
اچھا, تو یعنی اگر اچھی ہوا ہو جائے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
نہیں, موسم میں بارش سے ان کو یہ لوگ کہتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں ٹھنڈ موسم میں.
ابھی ہم خواتین کی نظر تو خیر میں یہ بولوں گی, بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو گرم گرم پکوڑے ہونے چاہیے. بھائی یہ کیا سگریٹ نوشی آپ لگا دیتے, اتنے خوبصورت موسم کو آپ سگریٹ کے دھوئیں سے اور خراب کر دیتے. پلیز خدا را یہ کام مت کیجیے.
جہاں پہ دیکھیے مطلب بڑے شہر ہیں, تہران ہوا, کراچی ہوا, یہاں پہ خود اتنا دھواں موسم میں ہوتا نہیں ہے, اس گاڑیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ الگ سے ضرورت ہی نہیں پڑتی.
بالکل,
کافی حد تک اس میں مہیا ہوتا ہے ماحول.
یہ بات تو بالکل صحیح ہے, تہران میں تو بہت ہی پولیوشن رہتی ہے. ویسے اس موسم میں تو بہت خوبصورت ہو گیا ہے, یہ پولیوشن کا تو میرے خیال سے ریشو بہت کم آ گیا ہوگا.
بالکل.
جی چلتے ہیں موضوع کی طرف واپس. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے بچوں کو دیکھیے, جو کہ بچے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں, موم کی طرح ہوتے ہیں, آپ نے جیسا بنایا بچہ ویسا ہی سامنے آتا, مطلب اپنی اخلاقی نظر سامنے آتا ہے. کس طرح اپنے بچوں کو اس سگریٹ کی مضر اثرات سے بچائیں؟
بچے بہت معصوم ہوتے ہیں.
بالکل, تو کوئی شک نہیں ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سگریٹ نوشی ہمیں بچوں کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے, ان کے اخلاق ہمیں بنانے چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو ہم سگریٹ نوشی کے جو ہے نا مضر اثرات کے بارے میں, اگر وہ بڑے ہیں سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بہت مضر صحت چیز ہے, اسے ہمیشہ کے لیے دور رہیں. لیکن والدین کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ خدا نخواستہ اس سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو کم از کم
بچوں کے سامنے
بالکل نہ کریں, گھر کے باہر کریں, گاڑی میں نہ کریں.
بالکل, جہاں بچہ ہے وہاں, بالکل
جہاں بچہ ہے وہاں ان کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے. اس لیے کم از کم اس کو تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کم از کم میرے والدین اگر پھر بعد میں اس کو نصیحت کریں کہ بیٹا یا بیٹی تو سگریٹ نہ پیے, اس کو ایسا نہ کہو کہ وہ خود کہہ دے کہ بھائی آپ جو پی رہے تھے.
بالکل, آپ تو کر رہے تھے, اب میں کیوں نہ کروں.
میں کروں کم از کم یہ.
بچوں میں عادت ضرور ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو کاپی کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر چھوٹی بچی کو دیکھے تو امی کی سینڈل پہن کے چل رہی ہوتی ہے.
بالکل بالکل بالکل, اس طرح ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم اگر بیماری دیتے ہیں ان کو, برٹش میں, یو کے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, روزانہ 800 بچے سگریٹ نوشی کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سینے کی بیماری ان کو لگتی ہے, کانسی کپڑے, تو 800 بچے روزانہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے اگر یہ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا دکھ ہے, دکھ کی بات ہے. اگر ہم بچوں کو سالانہ اس طرح کے فرسٹ ایئر میں, اگر اس کی زندگی کا اس کا پہلا دوسرا تیسرا سال ہے ہمارے سگریٹ نوشی کی وجہ سے, اس کو زیادہ ڈاکٹر کے پاس اس کو دکھانا پڑتا ہے,
جی,
تو اس میں بھی سوچنا چاہیے.
بالکل, ہمارے بچوں کا سب مستقبل کا مستقبل بات ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک بار اکثر سگریٹ کے ڈبوں پہ دیکھا گیا ہے جو ہم نے اطراف میں, یا لکھا ہوتا ہے لنگ کینسر ہو رہا ہے سگریٹ کی وجہ سے, یہ بات درست ہے کہ آیا لنگ کینسر کا تعلق ہے واہن سگریٹ سے یا نہیں؟
جی, سگریٹ نوشی کا لنگ کینسر کے علاوہ
جی
منہ کے کینسر,
اچھا
ٹھیک ہے, منہ کے کینسر, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर कैंसरस है।
अच्छा, कैंसरस
है, ऑल ओवर कैंसर है, लेकिन लंग कैंसर को सबसे ज़्यादा इसलिए याद किया जाता है कि ये सबसे पहले जो धुआँ होते हैं वो लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो सबसे जो अवल फर्स्ट चीज़ में जो मुतासिर करने वाली अर्गन है वो लंग्स हो सकती है, तो मुंह का कैंसर इसमें शामिल है।
अच्छा, तो मुंह का भी,
मुंह का भी कैंसर कार्स करता
है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, हमने वालदैन यहाँ पे बात कर ली घर की जिम्मेदारी या घर के अफराद, मीडिया और इंटरनेट का कितना गहरा ताल्लुक है, मतलब बच्चों में इसकी अवेयरनेस देने का या बच्चों को इस तरफ लाने का या ना लाने का कितना ताल्लुक है, यानी आपके ख्याल में क्या रोल प्ले करता है मीडिया और इंटरनेट इसमें?
मीडिया और इंटरनेट का तो आजकल
मीडिया और
इंटरनेट का है, लेकिन अलमी इदारा सेहत पूरी दुनिया में अब चूंकि इस चीज़ के ख़िलाफ़ सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ जो है ना एक कंपेन चल रही है, तो मीडिया और इंटरनेट इस बारे में पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है। अब वो जो नेगेटिव रोल उसका था अब वो कम हो गया है।
अच्छा, तो यानी वो इस तरह के लाइक अवेयरनेस बनाए बच्चों के लिए कि आप ये ना पिए या लंग कैंसर हो जाएगा, इस तरह एक अवेयरनेस आनी चाहिए। तो मीडिया की बात होगी। एक बात और, वालदैन को आप, यानी अगर मैं बोलूँ इस तरह से, आप एक क्या नसीहत भी नहीं, वालदैन का किरदार कितना अहम बोलेंगे? ये एक
तरह वालदैन का किरदार तो बहुत ज़्यादा है,
तो हर पहलू में,
हर चीज़ में, हर, लेकिन जो बुरी आदत अपनाई जाती है वो अक्सर वालदैन इतनी बिजी होते हैं वो अपने बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखते, लुकअप टेंडर नहीं करते, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कोई और वजह हो सकती है कि वो उसके वालिदैन
उसको। बात के दरमियान में एक बात पूछना चाहूँगी, अक्सर वालिदैन घर के बाहर नहीं लेकिन बुरे दोस्त भी होते हैं जो इस बात का सबब बनते हैं कि बच्चा घर में शायद ये काम नहीं कर रहा लेकिन बाहर जाके बुरे दोस्तों से सीख रहा है और बुरे दोस्तों की सोबत ने उसको सिगरेट नोशी में लगा दिया, वालिदैन किस तरह उसकी रोकथाम करें?
नहीं, ये तो एक फैक्टर है, दोस्तों का तो बहुत अहम रोल है, वो दोस्तों का, स्कूल में जो दोस्त होते हैं, कॉलेज में दोस्त होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, यहाँ जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ उसके दोस्त होते हैं,
तो बच्चे छुपा जाते हैं ऐसी बात को, वालदैन
अक्सर छुपाते हैं।
बिल्कुल, तो वालदैन क्या करें इस सिलसिले में, लाइक वो बच्चों को किस तरह टारगेट करें, किस तरह बच्चों को फॉलो करें,
बच्चों को इस तरह फॉलो करें उसके दोस्तों के साथ, उसके वालदैन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जब जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके उस्ताद के साथ उसका जो डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए कि बच्चा कैसा है, पढ़ता है नहीं पढ़ता, अगर वो पढ़ाने में अच्छा है ठीक है, उसके दूसरे अदात व अतवार के बारे में उसके दोस्तों से पूछना चाहिए, ठीक, उसको फॉलो करना चाहिए, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए,
सही नज़र रखे,
नज़र रखना चाहिए हमेशा के लिए।
चलें डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त हुआ हसन भाई के पास चलने का, उनकी नई नई और ताज़ी खबरें सुनने का।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से यानी तकरीबन कह सकते हैं एक किस्म का एडिक्शन भी है, कम से कम हम लोग खुद फराहम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो एडिक्शन, तो उसके हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, आज हमने आपके लिए टैबलेट में यहाँ नहीं रखा है, वो बहरहाल इसकी वजह से नहीं था, इस मौजू की वजह से, लेकिन बहरहाल एक दूसरे मसाइल है, मैं इंशाल्लाह कभी बताऊंगा। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूंगा वो इस हवाले से है कि टैबलेट्स आजकल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जुज़ बन गए, और न सिर्फ हमारी ज़िंदगी का बल्कि छोटे बच्चों का भी। इस सिलसिले में जो अभी हालिया जो तहकीक हुई है वो तकरीबन 1463 बच्चों पर तहकीक हुई है जो उनकी उम्र यानी 0 से लेकर 8 साल तक की थी, और बहुत ही मज़ेदार उसके नतायज सामने आए हैं। एक तो ये देखा गया है कि सन 2011 में 38% 8 साल से कम के बच्चे मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स, काइंडल्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन अब जो है ये यानी उम्र जो है वो घट के 2 साल की हो गई, यानी अब 2 साल के बच्चे जो हैं 38% 2 साल के बच्चे इनमें से ही 1400 में से तकरीबन वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जब 9 साल के हो जाते हैं बच्चे तो तकरीबन 116 SMS और इसके अलावा 85 ईमेल्स वो लोग भेज चुके होते हैं, और 2 साल के उम्र 2 साल से उनकी जब उम्र कम होती है तो वो सीख गए होते हैं, यानी हत्ता जब ठीक से एक जुमला वो लोग नहीं बोल पाते, टच स्क्रीन्स पर काम करना और मुख्तलिफ फ़ोन करना ये सब आराम से वो सीख चुके होते हैं। और जब ये वो लोग सीखते हैं तो वालदैन तो बड़े खुश होते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीख गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है तकरीबन 60% वालदैन को इत्मीनान नहीं रहता कि ये अपने उनके बच्चे के लिए मुफीद चीज़ है या नहीं है। कहा जाता है कि यानी प्राइमरी क्लासेस में पहुंचने से पहले, इब्तदाई तालीम हासिल करने से पहले ही 70% बच्चे सीख चुके होते हैं कि कैसे काम किया जाए मुख्तलिफ टैबलेट्स, कंप्यूटर्स या इस किस्म की दीगर चीज़ें जो गैजेट्स होते हैं उनसे काम करना उनको बहुत आसानी से आ गया होता है, और हमसे और आपसे कहीं बेहतर वो लोग इस सिलसिले में काम करते हैं। जो चीज़ मैं ज़रूरी समझता हूँ इस सिलसिले में कहना वो ये है कि कहा जाता है कि यानी अभी एक अमरीकी मरकज़ है इसी के बच्चों के यानी सेहत के मुतालिक वो लोग काम करते हैं। मैं इसलिए अमरीका का जिक्र कर रहा हूँ कि ये वही ममालिक हैं जो या फिक्र इन चीज़ों की उनके उनकी थी या बहरहाल असल कंपनियाँ वहाँ की हैं, और हम लोगों के लिए वो कुछ और सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ और सोचते हैं। तो ये आप लोग मद्देनज़र करार दें कि उन्होंने कहा है कि एक दो साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल 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 इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ऐसी गैजेट्स, क्योंकि उनकी शख्सियत पर ये सारी मौसर साबित हो सकती हैं अगले उसके चंद साल में। और ये जो आज आप सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कत्ल हो रहे हैं नए नए किस्म के नए नए असलहों के ज़रिए, ये सब उसके नतायज हैं। जो आदमी दूर होता जाता है अपने घर वालों से, अपने मुआशरे से, और आखिर में एक गैर मुफीद बल्कि एक ख़तरनाक शख्स अपने मुआशरे के लिए साबित हो सकता है। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी टैबलेट भी आ गई, हमारे साथियों ने जल्दी से वो लोग ले आए, हमें नहीं मालूम था इतनी इस हद तक हमारी बात मुअसर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक चीज़ जो मैं और बताना चाह रहा हूँ इस हवाले से है कि ड्रिंक्स जो है मुख्तलिफ हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक और जो बुरी आदत है, मेरे ख्याल में सिगरेट की ही सदा की चीज़ है और नुकसानदेह होने के लिहाज से, वो है मुख्तलिफ किस्म के फिज़ी ड्रिंक्स या जिसे कहा जाता है जो कोलाज होते हैं मुख्तलिफ, या कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें हम लोग आम तौर से कहते हैं, और बहुत खुश खुश हम लोग पीते हैं किसी खाने के साथ और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो एक तरकीब बताई थी कैसे आप छोड़ सकते हैं, इरादे की बात की और मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन अभी जो देखा गया है वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो आपने देखा होगा कि फ्रूट बेस्ड जो ड्रिंक्स होती हैं अगर आप उनका इस्तेमाल करें, हत्ता अगर कार्बोनेटेड हो, वो कहीं बेहतर है आम ये जो कोला इन सब होता है उससे, इस लिहाज से कि इसमें जो बेस होता है वो खुद जो कंसनट्रेट होता है उसका फलों का वो इस्तेमाल किया जाता है, या अगर बिलफर्ज फलों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो मुख्तलिफ किस्म के बस मज़े और रंग इस्तेमाल होते हैं जो बदन के लिए ज़्यादा मुज़िर नहीं है। कम से कम अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि गैर मुफीद हो। और एक और चीज़ जो कही जाती है इसी हवाले से कि उसमें बहुत कम शुगर की बहुत कम मकदार होती है बनस्बत आम ड्रिंक के, क्योंकि ये पानी और शुगर बेस्ड इन्हें ड्रिंक्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से गैर मुफीद होती हैं कि उसमें दीगर मवाद भी ऐसे शामिल किए जाते हैं, एसिड्स शामिल किए जाते हैं जो थोड़े दिन के अंदर शामत बुला देते हैं पूरे इन निज़ाम इन्हज़ाम की, और हम लोगों की सेहत भी थोड़े दिन में मुतासर होने लगती है। शुरू में शायद पता न चले लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद हड्डियों का खोखला होना, ये सब इसके नतायज हैं। एक और चीज़ इस सिलसिले में जो कही जाती है, मैं कोशिश करूँगा इसको इधर ले आऊँ, हाँ ये बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि आपने देखा होगा आजकल एलोवेरा के ड्रिंक्स मिल रही हैं और हर जगह पे मौजूद हैं, उसके फ़वाद के बारे में यकीन है एलोवेरा के आपको मालूम होगा, और उन ड्रिंक्स पर भी 20 और जो चीज़ नहीं होंगी वो भी लिखी रहेंगी उन चीज उसकी बोतलों पर। लेकिन ये याद रखिए कि एलोवेरा का असल फ़ायदा वही उसका जो गूदा जो निकलता है उसके पत्ते में से, बस वही है। आप अगर उसको किसी पानी में डाल कर थोड़े यानी बर्फ़ डाल कर या हल्की सी शक्कर डाल कर इस्तेमाल कर लें तो यकीनन मुफीद होगा। ये जो ड्रिंक्स मिल रही हैं इसमें इतनी शुगर की मकदार ज़्यादा होती है और बस उसका फ्लेवर या मज़ा होता है तो वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता। कोशिश करें जहाँ तक हो सके घर में बनी हुई ड्रिंक्स इस्तेमाल करें। कार्बोनेट करने के मुख्तलिफ रास्ते भी होते हैं, उसमें वो जो ख़ास जो मज़ा होता है वो लाने के लिए या जो कैफियत जो होती है वो लाने के लिए आप खुद मुख्तलिफ यानी रास्ते होते हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा। तो कोशिश करें कि जूस का इस्तेमाल करें और जहाँ तक हो सके हत्ता यानी जो मुख्तलिफ फ्लेवर्ड जो इस तरह के ड्रिंक्स आती हैं उनका इस्तेमाल कम करें या ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होगा। और ये एक और रास्ता है ताकि आप अपना यानी कह सकते हैं एडिक्शन कम कर दें मुख्तलिफ ड्रिंक्स की तरफ से, कोलों की तरफ से, कोलाओं की तरफ से, और बहरहाल इस तरह की दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं।
बहुत शुक्रिया हसन जी। डॉक्टर साहब हमारे पास 3-4 मिनट वक्त है, एक खूबसूरत सा पैगाम, एक मुफीद पैगाम जब वालदैन को देना चाहेंगे सिगरेट नोशी के मुतालिक जो बच्चों पर असरात हैं इसके। जी
बाबा, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सारे नाज़रीन के लिए, खुसूसन उन वालदैन के लिए जो सिगरेट पीते हैं, ये है कि वो एक दफ़ा ज़रूर सोच लें, सिगरेट जलाने से पहले वो एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि इसकी जो सिगरेट है इसके अपने बॉडी के ऊपर क्या असरात हैं और उसके बच्चे के ऊपर सेहत के ऊपर क्या असरात हैं, ये उसको ज़रूर पता होना चाहिए।
बिल्कुल।
दूसरी ये कि उसकी ज़िंदगी का हर 10 मिनट, हर एक सिगरेट जो वो पीता है उसकी ज़िंदगी से 10 मिनट काट रहा है।
अच्छा,
ये उसको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद और खूबसूरत गुफ्तगू रही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी इस गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और उनको बहुत पसंद आई होगी। जी हमारे को चलना हसन भाई के पास। जी हसन भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, और कैमरा भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आ गया कैमरा हमारे पास, और यकीनन आज की गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित हुई होगी, और अगर इन चीज़ों पर अमल करें तो यकीनन आगे जाकर पछतावा हम लोगों को नहीं होगा। अभी हो सकता है हम लोगों की उम्र उतनी ना हो, लेकिन आगे जाकर इन दिनों को हम याद करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत। तो खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, और डॉक्टर हाजी बहादुर की भी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। हमारे साथ ही इस वक्त बता रहे हैं कि हमारा राबता हो गया है डॉक्टर इनायत हुसैन से, जो नफ्सियाती उम्र के माहिर है। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब।
जी वालेकुम सलाम,
खैरियत से हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र।
अच्छा, हम लोग की गुफ्तगू आज बच्चों के हवाले से चल रही है, और हफ्ते का मौजू जो है पछतावे के बारे में। तो यही चीज़ इसी से हम शुरू करना चाहेंगे कि बच्चों में ये पछतावे की कैफियत और ये एहसास कब से शुरू होता है, किस एज से डेवलप होना शुरू होता है?
देखिए बच्चों की तरबियत के हवाले से जो है वो जब बच्चा जो है वो 3 साल के बाद उसमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस आना शुरू होती है, तो जब उससे कोई भी मिस्टेक होती है तो ये एहसास उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अब जाहिर सा कि इंसान, आपको पता है कि वो जो है उससे जो है वो खता तो होती रहती है, मिस्टेक्स होती हैं, यानी कोई मासूम तो नहीं है। तो वहाँ पे ना पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी तरबियत में जो है वो किस तरह हो। यहाँ पे एक चीज जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो हतमन इसको जो है डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जब बच्चे जो है इस फीलिंग्स का उनको एहसास हो के जो है मतलब के उनसे भी मिस्टेक हो गई है, अब वो जो है ना बहुत उनको पछतावा है, पशेमानी हो रही है, तो उस वक्त जो है वो जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि बच्चों को जो है ना उसमें उनकी जो है वो जो गिल्टी फील हो रही है उस टाइम उनको जो है ना कोई हकारत का एहसास ना हो, यानी कि वो जो है ना अपनी तहकीर फील ना करें कि जो है ना उनकी जो है ना बहुत इंसल्ट हो रही है। तो ये मौका है, लेकिन जब बाद में बच्चा जब नॉर्मल उसमें है उसमें, तो फिर बच्चों को समझाएंगे, देखें अगर आप पहले से जो है ना ख्याल रखते सोचते जो आपने काम किया है तो आपसे ये मिस्टेक ना होती तो आपको इतना पछतावा ना होता, यानी इन चीज़ों का हतमन जो है ख्याल रखना चाहिए तरबियत के हवाले से।
अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ लूँ, माफ़ कीजिए, एक मैं सवाल जो ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि आपने कहा 3 साल से यानी ये चीज़ शुरू होती है पछतावे का एहसास, छोटे बच्चे होते हैं या हम लोग बैठ के उनको समझाते हैं, हम देखते हैं या कोई सिरे से कोई रद्द अमल है ही नहीं उनकी जानिब से, या वो फिर जाके अपना काम शुरू करते हैं, तो कैसे उन छोटे बच्चों को क्या एहसास दिलाया जा सकता है कि आपने गलत बात की है अपने बच्चे से ये चीज़ कहें?
देखिए बच्चों के अंदर जो है ना जिस तरह जिक्र किया कि उनमें अवेयरनेस आना शुरू होती है, तो उन्हें जो है ना जो भी अच्छी और बुरी बातों का एहसास उन्हें होने लगता है। मतलब अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि जो ना हम यानी हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं उनके बात पे ना, तो उनको ये फीलिंग होती है कि हमने जो काम किया उससे जो है वो सामने वाले जो है वो उसको खुशी का एहसास हुआ, या इसी तरह अगर कोई गलत काम करते हैं तो जो है वो हम जो है वो अपनी जो है वो नाराजगी का जो है एहसास करते हैं। तो ये चीजें जो है ना फीलिंग्स होती है वो बच्चे जो है ना एहसास करते हैं, तो इसी वजह से जो ना हम जो है ना यानी जो बिहेवियर है उससे जो ना बच्चों को समझा सकते हैं कि जो है काम कर रहे हैं कि वो अच्छा काम है या बुरा काम है।
जी
तो उसके अंदर ये कि जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो हम उनको जो ना समझाते हैं, तो जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होते हैं मसलन मखसूसन जो है वो प्री स्कूल लाइफ में आते हैं, मतलब 5-6 साल के बच्चे होते हैं या उसके बाद जो है उनके अंदर जो ना एक और एहसास होता है टेंट्रम का, यानी उन्हें एक तरह की वो जिद्दी होना शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल जो है ना वो एहसास होता है जो इन बच्चों के अंदर स्टार्ट होता है। तो अगर हम जब बच्चों को गलत काम करता है और उस मौके पर हम बच्चों को समझाना शुरू कर दें तो मुमकिन है शायद उसका असर वो ना ले, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा फील करते हैं, और काफी हद तक जो है बच्चे जो है वो अगर हम उस मौके पर समझाएं तो वो जहनी तनाव का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे। अच्छा। यानी काफी स्ट्रेस उसमें ले लेते हैं अपने, यानी हमने काफी हद तक देखा है कि जो ना क्लिनिक में होते हैं तो मसलन 4 साल से ऊपर की जो बच्चे या बच्चियां होती हैं वो हम हमारे पास लेकर आते हैं तो उनके पास जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ जो है तनाव की वजह से वो जो ना बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है, मसलन पेट में दर्द हो रहा होता है या सर में दर्द होता है या मसलन में उनके स्वास्थ्य समझ आता है या इस और जो दूसरी प्रॉब्लम जो जहनी तनाव की वजह से जो है वो बॉडी में उनको होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है। यानी बच्चों को जो है ना बिना वजह बार बार जो है ना समझाया जा रहा है, इसमें ये होता है कि जब बच्चा रिलैक्स है, नॉर्मल है, खेल रहा है, उस टाइम अगर यानी आपसे गुफ्तगू कर रहा है उस समय उसको हम समझाएं तो काफी जो है ना इसका हमें असर मिलेगा और उसके अंदर जो है वो तरबियत के हवाले से जो है वो हम देखेंगे कि वो चीजें जो है गेन करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमने रुबाब बैंक को मौका ही नहीं दिया बोलने का, इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारी गुफ्तगू में शरीक हुए और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी हम आपकी खिदमत में रहेंगे
इंशाल्लाह।
तो चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अच्छा ब्रेक का वक्त हम लोगों के पास नहीं है, मौजू कल के हवाले साहब बता
जी, कल के बारे में बताते चलूँ, डॉक्टर फहद साकिब लोधी साहब हमारे साथ होंगे, हम दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से,
हम लोगों का जारी रहेगा
जी। हफ्ते का मौजू भी हमारा पछतावा है, और वैसे मैं बताना चाहती थी कि नाज़रीन आपके कोई भी सवालात हों इस मुतल्लिक दिल की बीमारी के मुतल्लिक, डॉक्टर फहद लोधी साहब हमारे साथ होंगे, आप ज़रूर हमें बताइए, हम पूछ के आपको ज़रूर उनके जवाब बताएंगे।
तो आज के मौजू के बारे में बताइए कि आप लोगों पर कोई असर भी, यानी बाज़ लोगों पर सब पे नहीं कह सकते असर भी कोई पड़ा है या नहीं सिगरेट के हवाले से, हम लोगों ने बात की इतनी जहमत करके कहाँ कहाँ से हम मेहमान लाते हैं तो आप जो है बहरहाल थोड़ा हम लोगों का ख्याल करके सिगरेट पीना छोड़ दें
बिल्कुल,
और हम लोगों के पास वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं,
खुदा हाफिज़।